एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेजबान एक
और मैं हूँ मेजबान दो।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में शायद हम उतना सोचते नहीं, है ना?
बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं द्विभाषावाद यानी बाइलिंग्विज्म की, और इसे समझने के लिए हम पेनेलोप गार्डनर क्लोरोस की किताब बाइलिंग्विज्म का सहारा लेंगे।
हाँ,
ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई भारत जैसे देश में तो शायद ही कोई होगा जो सिर्फ एक ही भाषा के दायरे में जीता हो।
सही बात है।
हम सब किसी न किसी स्तर पर एक से ज्यादा भाषाएं सुनते, समझते या बोलते हैं।
हाँ, और मजे की बात यह है कि दुनिया भर में भी यही हाल है, फिर भी अक्सर ऐसा माहौल बना दिया जाता है मानो सिर्फ एक भाषा जानना ही सामान्य या आदर्श हो।
वही तो।
जैसे दो भाषाएं जानना कोई मतलब अजीब बात हो या कोई कमी हो।
यही तो। ये किताब इसी धारणा को चुनौती देती है। यह हमें दिखाती है कि द्विभाषावाद कोई अपवाद नहीं बल्कि इंसानी समाज का एक बहुत ही आम और स्वाभाविक पहलू है। ये किताब उन मिथकों को तोड़ती है और हमें विज्ञान और समाजशास्त्र की नज़र से समझाती है कि दो भाषाएं जानने का असल मतलब क्या है।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमारी समझ को कैसे बदल सकती है।
हाँ, जरूर।
तो पहले बात करते हैं लेखिका की पेनेलोप गार्डनर क्लोरोस। कौन है ये और क्यों उनकी बात इस विषय पर मतलब वजन रखती है?
पेनेलोप गार्डनर क्लोरोस लंदन विश्वविद्यालय के बिर्कबेक कॉलेज में सोशियोलिंग्विस्टिक्स यानी समाज भाषा विज्ञान
हाँ,
और भाषा संपर्क की जानी मानी एमेरिटा प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पूरी अकादमिक जिंदगी इसी क्षेत्र में लगाई है। भाषाएं कैसे मिलती हैं, लोग कैसे भाषाएं बदलते हैं और द्विभाषावाद क्या है।
और सबसे खास बात यह है कि उनका काम सिर्फ लाइब्रेरी या ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जमीन पर उतरकर समुदायों के बीच काम किया है।
अच्छा।
जैसे फ्रांस के स्ट्रासबर्ग इलाके में, जहां फ्रेंच और जर्मन एल्सेशियन बोली के रूप में भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से साथ साथ रही हैं। उन्होंने वहां के लोगों के बीच रहकर देखा कि वे अपनी भाषाओं का इस्तेमाल असल जिंदगी में कैसे करते हैं।
तो मतलब प्रैक्टिकल अनुभव है। इस जमीनी अनुभव का फायदा यह है कि उनकी बातें सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, वो समझती हैं कि द्विभाषी होना असल में कैसा होता है, किन सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, पहचान कैसे बनती बिगड़ती है।
सही कहा,
ये चीजें सिर्फ किताबों में पढ़ने से समझ नहीं आती।
बिल्कुल। और हाँ, कोड स्विचिंग पर उनका काम बहुत अहम है। कोड स्विचिंग यानी बातचीत में भाषाएं बदलना,
जो हम भारत में तो खूब करते हैं।
हाँ, धड़ल्ले से हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी के शब्द या वाक्य ले आना या किसी और भाषा के। पहले इसे लोग भाषाई कमजोरी या गड़बड़ी मानते थे।
हाँ, कई बार तो मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन गार्डनर क्लोरोस जैसे विद्वानों ने साबित किया कि ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि एक बहुत ही कुशल नियम आधारित संचार रणनीति है।
अच्छा,
ये दिखाता है कि बोलने वाला कितना स्मार्ट है, कितनी आसानी से दो भाषाओं के बीच संतुलन बना सकता है, और वो मुश्किल अकादमिक बातों को भी आम भाषा में समझा पाती हैं, जो इस किताब की बड़ी खूबी है।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए अब सीधे किताब के दिल में उतरते हैं। बाइलिंगुलिज्म, किताब का केंद्रीय विचार या मुख्य तर्क क्या है, ये हमें क्या बताना चाहती है?
किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क ये है कि जिसे हम नॉर्मल मानते हैं, यानी सिर्फ एक भाषा जानना, वो दुनिया भर में असल में कह सकते हैं असामान्य है।
अच्छा।
हाँ, असली नॉर्मल तो बहुभाषावाद है। ये किताब उस एक भाषी मिथक, मोनोलिंग्वल मिथ को सीधे सीधे चुनौती देती है, जो कहता है कि एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक भाषा ही आदर्श है।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अक्सर एक भाषा बोलने को मानक मान लेते हैं। गार्डनर क्लोरोस कहती हैं कि द्विभाषावाद कोई स्विच नहीं है,
हाँ,
कि या तो आप ऑन हैं द्विभाषी या ऑफ हैं एक भाषी, ऐसा नहीं है।
नहीं,
ये तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक पैमाना है।
बिल्कुल
इस पैमाने पर हर कोई कहीं ना कहीं फिट होता है।
बिल्कुल।
कोई शायद दूसरी भाषा सिर्फ समझ पाता हो, बोल ना पाता हो, कोई काम पर एक भाषा इस्तेमाल करता हो, घर पर दूसरी, कोई दोनों भाषाओं में लगभग बराबर माहिर हो। किताब यही पूछती है द्विभाषी होने का असल मतलब क्या है,
बिल्कुल।
और जवाब देती है कि इसकी कोई एक परिभाषा हो ही नहीं सकती।
और ये समझने के लिए वो हमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, भाषा नीति, कई अलग अलग खिड़कियों से झांकने का मौका देती है और मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि कोई कितनी फ्लुएंट है,
सही,
बल्कि ये कि लोग असल जिंदगी में अपनी भाषाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। और सबसे अहम बात, किताब द्विभाषावाद को एक समस्या या बोझ की तरह नहीं देखती जैसा कि पुराने जमाने में सोचा जाता था।
हाँ, वो डर था पहले।
बिल्कुल, बल्कि इसे एक संपत्ति, एक संसाधन, एक इनरिचमेंट मॉडल के तौर पे देखती है। यानी एक से ज्यादा भाषा जानना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है।
तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है।
हाँ, बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो ये तो हुई मोटी मोटी बात, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब के कुछ खास हिस्सों या विचारों पर बात करते हैं। शुरुआत परिभाषा वाले मुद्दे से ही करते हैं, जैसे आपने अभी छुआ। किताब कहती है आदर्श द्विभाषी एक मिथक है।
हाँ बिल्कुल, वो जो तस्वीर हमारे दिमाग में होती है ना कि कोई व्यक्ति दो भाषाओं को बिल्कुल एक जैसा एकदम परफेक्ट बोलेगा हर सिचुएशन में, वो असल जिंदगी में बहुत कम होता है, लगभग न के बराबर। किताब कहती है कि ये एक स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूम है। सोचिए, एक लाइन है जिसके एक सिरे पर वो है जिसे दूसरी भाषा के बस कुछ शब्द आते हैं, और दूसरे सिरे पर वो जो दोनों भाषाओं में बहुत माहिर है। ज्यादातर लोग कहीं बीच में होते हैं।
और ये भी कि हमारी भाषाई क्षमता कार्यक्षेत्र विशिष्ट, डोमेन स्पेसिफिक होती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
जैसे हो सकता है कोई अपने ऑफिस के काम में अंग्रेजी में ज्यादा सहज हो, लेकिन घर पर दोस्तों के साथ अपनी मातृभाषा में ज्यादा खुलकर बात करता हो।
बिल्कुल,
और इसमें कुछ भी अजीब या कमतर नहीं है, ये भाषाओं के इस्तेमाल का स्वाभाविक तरीका है।
अच्छा, अब आते हैं उस दिलचस्प सवाल पर कि दो भाषाएं जानने का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। कैसे दिमाग तेज होता है जैसा कुछ लोग कहते हैं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
या कन्फ्यूजन बढ़ता है जैसा पहले डर था? यहाँ द्विभाषी लाभ, बायलिंगुअल एडवांटेज की बात आती है।
हाँ, किताब बताती है कि वो पुराने डर कि दो भाषाएं सीखने से बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे या उनका दिमागी विकास धीमा हो जाएगा, वो सब निराधार है।
अच्छा,
बल्कि शोध इशारा करते हैं कि दो भाषा प्रणालियों को लगातार संभालने से दिमाग की कुछ कसरत होती है। इससे कुछ संज्ञानात्मक कौशल, खासकर कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, आप कह सकते हैं दिमाग के मैनेजर वाले काम
बेहतर हो सकते हैं।
ये मैनेजर वाले काम जैसे?
जैसे ध्यान लगाना, फालतू चीजों को नजरअंदाज करना, एक काम से दूसरे पे फटाफट स्विच करना, सोचने में लचीलापन।
अच्छा,
क्योंकि द्विभाषी दिमाग को लगातार ये तय करना पड़ता है कि कब कौन सी भाषा बोलनी है और दूसरी को रोकना है। ये एक तरह की दिमागी जिम्नास्टिक्स है।
दिलचस्प।
लेकिन ये भी मानना होगा कि इस बायलिंगुअल एडवांटेज पर आजकल थोड़ी बहस भी चल रही है। कुछ नए शोध कहते हैं कि शायद शुरुआती नतीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था।
हाँ, मैंने भी सुना। किताब भी इस बहस को नजरअंदाज नहीं करती, लेकिन मूल बात वही रहती है कि द्विभाषावाद हानिकारक नहीं है और संभावित फायदे जरूर हैं।
और एक और चीज है अधिभाषाई जागरूकता, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर
हाँ, समझाएं इसे जरा।
इसका मतलब है भाषा के बारे में सोचने की क्षमता। द्विभाषी बच्चे अक्सर ये जल्दी समझ जाते हैं कि चीजों के नाम होते हैं, और एक ही चीज के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकते हैं। वो भाषा को एक सिस्टम की तरह जल्दी देखने लगते हैं।
अच्छा, तो भाषा के स्ट्रक्चर को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही।
अब आते हैं बच्चों पर। बहुत से माँ बाप खासकर भारत में चिंता करते हैं कि अगर बच्चे को घर पे एक भाषा और स्कूल में दूसरी सिखाई तो क्या वो पिछड़ जाएगा, क्या वो कन्फ्यूज हो जाएगा।
हाँ, ये बहुत आम चिंता है। किताब इस डर को भी दूर करती है। वो बताती है कि द्विभाषी बच्चे भी भाषा सीखने के उन्हीं पड़ावों से गुजरते हैं जिनसे एक भाषी बच्चे। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी कुल शब्द संपदा, मतलब वोकैबुलरी, दोनों भाषाओं में बटी हो, तो किसी एक भाषा में शायद थोड़े कम शब्द लगे शुरुआत में, लेकिन कुल मिलाकर वो पीछे नहीं रहते।
किताब एक व्यक्ति एक भाषा, वन पर्सन वन लैंग्वेज, OPOL, जैसी रणनीतियों का जिक्र करती है जहां माँ एक भाषा बोले, पिता दूसरी।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
लेकिन वो ये भी कहती है कि यही एकमात्र सफल तरीका नहीं है। सबसे जरूरी है कि बच्चे को दोनों भाषाओं का लगातार एक्सपोजर मिले और उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो।
मतलब माहौल और जरूरत ज्यादा अहम है।
बिल्कुल, और बच्चों का भाषाएं मिलाना, जैसे बोलते बोलते हिंदी के वाक्य में अंग्रेजी का शब्द डाल देना।
हाँ हाँ, करते हैं बच्चे ऐसा।
हाँ, किताब कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी कन्फ्यूजन की निशानी नहीं।
अच्छा, ये तो राहत की बात है कई पेरेंट्स के लिए।
बिल्कुल, बल्कि ये दिखाता है कि बच्चा अपने पास मौजूद सभी भाषाई साधनों का इस्तेमाल कर रहा है।
अब आते हैं कोड स्विचिंग पर। ये तो हमारे यहाँ इतना आम है कि शायद हम इसे नोटिस भी नहीं करते। बातचीत में धड़ल्ले से हिंदी, अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं मिक्स करना।
बिल्कुल, और किताब का ये एक बहुत मजबूत पक्ष है। गार्डनर क्लॉरोस इसे भाषाई कमी या अयोग्यता नहीं मानती, वो इसे एक जटिल और कुशल संचार क्षमता के रूप में देखती हैं।
वाह, कमी नहीं क्षमता।
हाँ, ये ऐसे ही नहीं होता, इसके अपने नियम होते हैं, व्याकरणिक बाधाएं, ग्रामेटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लोग यूं ही कहीं भी भाषा नहीं बदल देते।
और इसके पीछे कई सामाजिक और व्यवहारिक कारण होते हैं, सोशल एंड प्रैग्मैटिक फंक्शंस होते हैं। क्यों करते हैं हम कोड स्विच?
हाँ, क्यों?
शायद किसी और की बात को उसी की तरह कहने के लिए कोटिंग, अपनी बात पर जोर देने के लिए एम्फेसिस, अपनी ग्रुप आइडेंटिटी दिखाने के लिए।
हाँ, जैसे दोस्तों के बीच खास तरह की भाषा है।
बिल्कुल, या किसी बात को ज्यादा साफ करने के लिए क्लैरिफिकेशन, या बस माहौल के हिसाब से ढलने के लिए। ये द्विभाषी लोगों के तर्कश का एक तीर है।
एक टूल की तरह। किताब में समुदायों और भाषा विकल्पों की भी बात है, जैसे डिग्लोसिया। ये शब्द शायद थोड़ा एकेडमिक लगे।
हाँ, लग सकता है, पर इसका मतलब दिलचस्प है। डिग्लोसिया मतलब एक समाज में दो भाषाएं या एक ही भाषा के दो रूप अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं।
अच्छा, कैसे?
एक ऊंची या हाई वैरायटी होती है जो औपचारिक कामों, सरकार, शिक्षा, साहित्य में चलती है, और एक नीची वैरायटी जो रोजमर्रा की बातचीत, घर, परिवार, दोस्तों में चलती है।
तो जैसे एक फॉर्मल भाषा और एक इनफॉर्मल।
हाँ, कुछ वैसा ही। शायद हम इसे भारत में कुछ हद तक औपचारिक हिंदी क्षेत्रीय भाषा और घर की बोली के बीच के फर्क से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि ये एकदम सटीक उदाहरण नहीं होगा। पैराग्वे में स्पैनिश एच और ग्वारानी एल भाषा का इस्तेमाल इसका क्लासिक उदाहरण है।
और इसी से जुड़ा है भाषा का रखरखाव या बदलाव, लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड लैंग्वेज शिफ्ट का मुद्दा।
हाँ, यानी क्यों कुछ समुदाय अपनी भाषाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए रखते हैं और क्यों दूसरे, खासकर आप्रवासी या अल्पसंख्यक समुदाय, धीरे धीरे अपनी भाषा छोड़कर उस जगह की प्रमुख भाषा अपनाने लगते हैं।
इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई कारण होते हैं।
बिल्कुल, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। और आखिर में शिक्षा में द्विभाषावाद। ये भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए तो बहुत ही अहम मुद्दा है, जहां क्लासरूम में अक्सर कई भाषाओं वाले बच्चे होते हैं।
हाँ, ये तो रोज की हकीकत है स्कूलों में।
किताब अलग अलग शिक्षा मॉडल्स को देखती है। एक है सबमर्जन, यानी बच्चे को बिना किसी सहारे के मुख्य भाषा वाली क्लास में डाल देना,
जो कि अक्सर बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए।
हाँ, ये अक्सर बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। फिर है ट्रांजिशनल, जहां बच्चे की घर की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ तब तक किया जाता है जब तक वो स्कूल की मुख्य भाषा न सीख ले, फिर उसे छोड़ दिया जाता है।
मतलब घर की भाषा को बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना, योगात्मक द्विभाषावाद।
एडिटिव मतलब जोड़ना।
हाँ, सोचिए, भाषा सीखना एक इमारत बनाने जैसा है। एडिटिव यानी आप पहली मंजिल घर की भाषा को मजबूत रखते हुए उसके ऊपर दूसरी मंजिल स्कूल की भाषा बनाते हैं।
अच्छा।
इसके उलट होता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, जहां पहली मंजिल को तोड़कर दूसरी बनाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है, नींव कमजोर हो जाती है।
ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है।
शोध साफ दिखाते हैं कि जो बच्चे अपनी घर की भाषा में पढ़ना लिखना सीखते हैं और उसे बनाए रखते हैं, वो स्कूल में ज्यादा सफल होते हैं, यहाँ तक कि स्कूल की मुख्य भाषा में भी।
कमाल है, मतलब घर की भाषा मदद करती है दूसरी भाषा सीखने में।
बिल्कुल, लेकिन अक्सर शिक्षा नीतियाँ इस वैज्ञानिक सच को नजरअंदाज कर देती हैं, क्योंकि वो भाषा को सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता या राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर देखती हैं।
ये तो एक बड़ी बहस का मुद्दा है।
वाह, ये तो काफी कुछ है सोचने के लिए। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, कुछ मुख्य संदेश जो श्रोता अपने साथ ले जा सकें, वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी सबक है, द्विभाषावाद एक स्पेक्ट्रम है, कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं। ये बात उन करोड़ों लोगों को राहत देती है जो शायद किसी भाषा में खुद को परफेक्ट नहीं मानते, पर फिर भी अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। भारत में जहां हम अक्सर कई भाषाएं थोड़ी थोड़ी जानते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है।
दूसरा, सिर्फ एक भाषा बोलना ही नॉर्मल है, ये एक मिथक है, एक गढ़ी हुई धारणा है।
हाँ, बिल्कुल।
दुनिया भर में देखें तो बहुभाषावाद ज्यादा आम है। ये हमें अपनी उन धारणाओं पर सवाल उठाने को कहता है जो शायद हमने बिना सोचे समझे अपना लिए हैं।
तीसरा, कोड स्विचिंग यानी भाषाएं मिलाना ये भाषाई क्षमता का सबूत है, कमजोरी या गड़बड़ी का नहीं।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
हाँ, भारत में ये हमारी बातचीत का अभिन्न अंग है। इसे शक या हिकारत से देखने के बजाय एक स्किल के तौर पर देखना चाहिए, जो हमारी बातचीत को ज्यादा रंगीन और प्रभावी बनाता है।
चौथा, ये याद रखना जरूरी है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये पहचान और ताकत से जुड़ी है।
गहरा मुद्दा है ये।
किस भाषा को कितना सम्मान मिलता है, स्कूलों में कौन सी पढ़ाई जाती है, सरकारी काम किस में होता है, ये सब समाज में शक्ति के संतुलन को दिखाता है।
भारत की भाषाई विविधता और उससे जुड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दे इसका बड़ा उदाहरण है।
और पांचवा, शिक्षा के लिहाज से योगात्मक द्विभाषावाद, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, एक खजाना है, बोझ नहीं। बच्चों को स्कूल की भाषा सीखने के लिए अपनी घर की भाषा छोड़ने पर मजबूर करना, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, न सिर्फ उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उनके सीखने की क्षमता के लिए भी।
हाँ?
अपनी भाषा की मजबूत नींव पर दूसरी भाषा सीखना बच्चे और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है। किताब में यकीनन कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए कुछ ऐसे मुख्य विचारों पर बात करते हैं जिन्हें हम एक तरह से किताब के कोट मान सकते हैं।
हाँ, जैसे पहला ये विचार, हमें द्विभाषी की कोई एक पक्की परिभाषा ढूंढना छोड़ देना चाहिए। द्विभाषावाद कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रम पर चलने वाली यात्रा है, जिसे हर व्यक्ति के अपने अनूठे अनुभव आकार देते हैं।
ये हमें उन तंग दायरों से आजाद करता है कि असली द्विभाषी कौन है।
बिल्कुल। दूसरा ये, कोड स्विचिंग भाषाओं का यूं ही होने वाला घालमेल नहीं है जो कमजोरी से पैदा होता हो। ये तो द्विभाषी व्यक्ति का एक रचनात्मक और नियमों में बंधा औजार है, जिससे वो सामाजिक दुनिया को समझता है, अपनी पहचान जताता है और मतलब को ज्यादा गहरा बनाता है।
ये सीधे सीधे उस सोच पर चोट करता है जो कोड स्विचिंग को गलत मानता है।
सही। तीसरा, जो थोड़ा राजनीतिक है पर महत्वपूर्ण, कई ताकतवर देशों में जो एक भाषा वाली सोच हावी है, वो एक वैचारिक निर्माण है, कोई कुदरती चीज नहीं। ये अक्सर सबको एक जैसा बनाने, एसिमिलेशन के राजनीतिक एजेंडे को छुपाती है और इस सच्चाई को नज़रअंदाज करती है कि बहुभाषावाद हमेशा से दुनिया का नियम रहा है, अपवाद नहीं।
ये हमें भाषा और राजनीति के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।
और चौथा, शिक्षा वाला, जो शिक्षा प्रणाली बच्चे को क्लास की भाषा सीखने के लिए अपनी घर की भाषा छोड़ने पर मजबूर करती है, वो ना सिर्फ सांस्कृतिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि दिमागी तौर पर भी अदूरदर्शी है। सच्ची शिक्षा बच्चे के पास पहले से मौजूद भाषाई हुनर पर बनती है, जिससे योगात्मक द्विभाषावाद पैदा होता है, जो उन्हें जिंदगी भर फायदा देता है।
ये स्कूलों और नीति बनाने वालों के लिए एक सीधी और स्पष्ट दलील है।
हाँ, बहुत शक्तिशाली बात है ये। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? आम इंसान इनसे क्या सीख सकता है?
हाँ, ये जरूरी सवाल है माता पिता के लिए। ये किताब एक तरह का आश्वासन है, अगर उनके बच्चे भाषाएं मिलाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं।
हाँ, ये बड़ी राहत है।
ये उन्हें घर पर अपनी भाषा बोलने और स्कूल में भी उसके महत्व पर जोर देने का आत्मविश्वास दे सकती है। भारत में ये सवाल बहुत आम है कि बच्चों से घर पर कौन सी भाषा बोलें।
शिक्षकों के लिए ये किताब उन्हें क्लास में मौजूद द्विभाषी बच्चों की भाषाओं को एक समस्या के बजाय एक संसाधन के तौर पर देखने में मदद कर सकती है।
नजरिया बदलने की बात है।
हाँ, वो कोड स्विचिंग को शायद सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के तरीके भी सोच सकते हैं। ये उन्हें एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म वाले कार्यक्रमों के वकालत करने के लिए तर्क देती है।
नीति बनाने वालों के लिए ये किताब सबूत देती है कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी सेवाओं में भाषा नीतियाँ ज्यादा असरदार और न्यायपूर्ण बनाई जा सकती हैं।
मतलब बेहतर पॉलिसीज के लिए आधार।
हाँ, ये तर्क देती है कि देश की भाषाई विविधता में निवेश करना असल में सामाजिक एकता और आर्थिक तरक्की में निवेश करना है।
खुद द्विभाषी लोगों के लिए ये उनके अपने अनुभवों को मान्यता देती है, उन्हें सही ठहराती है। ये उन्हें अपनी कोड स्विचिंग जैसी आदतों को शर्मिंदगी से नहीं बल्कि गर्व से देखने में मदद कर सकती है।
अपनी पहचान को अपनाने में मदद करती है।
बिल्कुल। ये एहसास दिला सकती है कि उनकी भाषाई पहचान अधूरी नहीं बल्कि ज्यादा समृद्ध है।
और हाँ, सिर्फ एक भाषा जानने वालों के लिए भी ये किताब फायदेमंद है। ये उन्हें दुनिया की एक बड़ी आबादी के अनुभवों को समझने का मौका देती है।
सही कहा।
इससे सहानुभूति और आपसी समझ बढ़ती है, और क्या पता शायद दूसरी भाषा सीखने की प्रेरणा भी मिल जाए।
हो सकता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही,
मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही रही कि द्विभाषावाद कितना ज्यादा सामान्य है और इसके उलट सिर्फ एक भाषा बोलने का विचार या मिथक समाज पर कितना हावी है। ये सोचना कि जिसे हम अक्सर नॉर्मल समझते हैं वो शायद वैश्विक स्तर पर उतना नॉर्मल है ही नहीं।
और हाँ, कोड स्विचिंग को लेकर मेरा नजरिया भी बदला। उसे एक कमी की जगह एक जटिल स्किल के तौर पर देखना वाकई आंखें खोलने वाला है।
मेरे लिए भाषा का पहचान और शक्ति के साथ जो गहरा रिश्ता है वो बहुत उभर कर आया। कैसे समाज तय करता है कि कौन सी भाषा ऊंची है, कौन सी नीची है और इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा के संदर्भ में एडिटिव बायलिंगुअलिज्म का विचार कि अपनी भाषा को खोए बिना दूसरी सीखना संभव है और फायदेमंद भी, ये बहुत शक्तिशाली और जरूरी लगा, खासकर भारत जैसे देश के लिए। ये किताब सच में द्विभाषावाद को देखने का लेंस बदल देती है।
बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक से ज्यादा भाषा जानना दिमागी लचीलेपन से लेकर सामाजिक समझ तक कई फायदे दे सकता है, तो एक समाज के तौर पर हम इसे सिर्फ बर्दाश्त करने या नज़रअंदाज करने की बजाय इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और सहेजने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये एक जरूरी सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।